So Hare Krishna, everyone. I'm very happy to be with you again in this wonderful month of Kartik.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ सभी भक्तों का फिर से कार्तिक में संग पा करके।
In this world, everyone wants to become rich and wealthy, and in Kartik, we can become spiritually rich and spiritually wealthy.
तो इस संसार में सभी लोग धनी और ऐश्वर्यपूर्ण होना चाहते हैं और इस कार्तिक के महीने में हम सभी लोग आध्यात्मिक रूप से बहुत धनी हो सकते हैं।
Today we are speaking about Nalakuvara and Manigriva, the two sons of Kuvera who had so much material wealth.
और आज हम लोग नल कुबेर और मणिग्रीव के बारे में श्रवण करेंगे जिनके पास जो कुबेर के पुत्र हैं बहुत धन था उनके पास।
Yet they were spiritually very poor.
लेकिन फिर भी वो आध्यात्मिक रूप से बहुत निर्धन थे।
However, by the mercy of Narad Muni, who cursed them, they became very spiritually rich.
परंतु नारद मुनि जिन्होंने उनको श्राप दिया वो श्राप उनको एक प्रकार का वरदान प्राप्त हुआ वो बहुत आध्यात्मिक रूप से वो धनवान हो गए।
If you come across a saint, a sadhu in your life, you are very, very fortunate.
तो अगर हमारे जीवन में साधु से हमारा अगर उनसे हमारा संबंध हो जाए तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हो जाते हैं।
साधु संग सर्व शास्त्र कोय लव मत्र साधु संग सर्व सिद्धि होय बाय द एसोसिएशन ऑफ अ साधु इवन फॉर वन मोमेंट ऑल परफेक्शन विल कम।
तो यहां तक कि अगर एक लव मात्र भी साधु का संग प्राप्त हो जाए तो सर्व सिद्धि प्राप्त हो सकती है।
हाउएवर बिफोर नलकुवरा एंड मणिग्रीवा बिकेम वेल्थी दे मेड सम मिस्टेक्स And today and tomorrow, we will be looking at the mistakes they made, and we will be thinking very deeply in our life how we can make sure we don't make the same mistake.
तो आध्यात्मिक रूप से धर्मान पढ़ने के पहले हम देखेंगे उनके जीवन में किस प्रकार से उन्होंने त्रुटि की थी, क्या त्रुटियां की थी, और हम अपने जीवन में गंभीरता से ये मनन करेंगे कि ये त्रुटियां हमसे न हो।
Today we are reading from Canto 10, Chapter 10, Text 6 to 8. However, I will not read everything because it will take extra time. I will just explain to you.
तो आज हम लोग 10वें स्कंद के 10वें अध्याय से 6 से 8 श्लोक हम लोग अध्ययन करेंगे। आज और कल हमें प्रभु जी का संग प्राप्त होगा। तो प्रभु जी पूरे श्लोक नहीं पढ़ेंगे लेकिन उसको व्याख्या करेंगे हमें।
In your own time, please read the text, read the purport. Srila Prabhupada explains everything very beautifully.
लेकिन अपने अपने समय के अनुसार सभी लोग अध्ययन कर सकते हैं प्रभु जी कह रहे हैं श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये तात्पर्य दिए हैं हम समझ सकते हैं।
In these three verses, the main teaching that Srila Prabhupada is giving us is that if one becomes proud of their wealth, then this pride which comes from wealth, money, this pride will lead to your downfall.
In three shlokas mein Shri Prabhupada likhte hain tatparya mein ki jo ahankar dhan se utpann hota hai, dhan ki wajah se aata hai, wo kis prakar se hamare patan ka karan ban sakta hai.
Kunti Maharani prays that she will not become bewildered by four different things because if we have good karma from previous lives, then in our life, it will manifest in four different ways.
तो कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि चार चीजें इससे मैं भ्रमित नहीं होना चाहती क्योंकि ये चार चीजें अगर कोई पिछले जीवन में कुछ पुण्य कर्म किए हैं तो उसकी वजह से ये चार चीजें उनको प्राप्त हो सकती हैं इस जीवन में।
जन्मेश्वरीय श्रुत श्रीभिर एधमाना मदापुमान निर्वारहत्य विदातुम वे त्वमकिंचन गोचरम। इफ यू स्टडी योर लाइफ एंड यू सी दैट नंबर वन यू हैड गुड फैमिली अराउंड यू, नंबर टू यू सो दैट यू हैड लॉट्स ऑफ वेल्थ, नंबर थ्री Krishna gave you very good intelligence, buddhi. And number four, you had very good looks. If you have these four things, then you can understand that you have good karma from previous life.
Prabhu ji keh rahe hain ki agar apne jeevan ka hum nirikshan karein और ये चार वस्तु अगर हम प्राप्त करते हैं, जैसे कि हमारा परिवार बहुत अच्छे परिवार में हमारा जन्म हुआ हो, और बहुत ही हमने जहाँ पर हम देखें बहुत धनवान, बहुत ऐश्वर्य और बहुत ही बुद्धि हमें प्रदान की गई हो, और या फिर बहुत हम देखने में सुंदर हो, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पूर्ववर्ती कर्मों के फल हैं।
Now, all of these things can be used for Krishna service, all of these can be used for spiritual purposes. However, if we become proud because of these things, or we become very eager to pursue these things, then it will take us away from our spiritual life.
तो ये सभी चीजें हम भगवान की सेवा में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी वजह से गर्वित हो जाएं, इसकी वजह से अहंकार से पूर्ण हो जाएं, तब ये हमारे पतन की ओर हमको ले जाते हैं।
If one becomes very desirous of these things, or one becomes proud of these things, then they come into the mode of passion and ignorance, which means they will not be able to find Krishna.
तो अगर या तो हम इसकी बहुत इच्छा करें इन सब चीजों को, चारों चीजों को प्राप्त करने की, या तो हम इसको इससे बहुत हम गर्वित महसूस करें, तो हम रजोगुण में कार्य करेंगे, और इसका अर्थ है कि हम कृष्ण को जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएंगे।
When Srila Prabhupada arrived in America, then he wrote one poem called Markine Bhagavad Dharma. And in this poem, he wrote one line, Rajastamagunairasabhayachan Vasudeva Kataruchi Nahese Prasan. He looked at all the American people and he said, they are completely covered by the modes of passion and ignorance. Vasudeva katha ruchi nahese prasa. How will they be able to get the taste for the message of Krishna?
तो श्री प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे जलदूत पे, जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने उसके पहले एक प्रार्थना लिखी थी, मार्कंडेय प्रार्थना जलदूत पर। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखा था कि जब ये रजो और तमोगुण से प्रभावित लोग जो होंगे, वो किस प्रकार से उनको वासुदेव की कथा में रुचि नहीं आएगी, क्योंकि इतने प्रभावित होंगे इस गुण से कि वो बाकी सब कुछ कार्य करेंगे लेकिन भगवान की कथा में रुचि नहीं आएगी।
So, of the four things that Queen Kunti mentioned are, the results of good karma, she said the opulences and wealth and money that one has, this is the most dangerous.
और चार चीजें उन्होंने बताई, जन्म ऐश्वर्य शुद्र शिवी, उसमें बोलती हैं कि जो धन का वैभव है वो सबसे ज्यादा भयानक है।
Because this money increases passion and ignorance and causes people to act in very unsaintly ways.
क्योंकि ये जो धन है ये लोगों को तमोगुण और रजोगुण की ओर, तमोगुण की ओर ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिससे कि जो ये जो सात्विक गुण होते हैं उससे दूर हो जाते हैं।
And this teaching you will find in all world religions everywhere.
और ये शिक्षा हमें सभी जो अलग अलग जो तथाकथित धार्मिक सिद्धांत हैं उन सभी में प्राप्त होते हैं।
In the Bible, there is a famous statement, money is the root of all evil.
तो बाइबल में कहावत है कि जो धन है वही मूल कारण है सभी पाप का।
Even in other traditions, for example, one of my friends, he became a sadhu in the Swaminarayan tradition.
और बाकी जो संप्रदाय जिस पर बता रहे हैं कि जैसे कि प्रभु जी के एक मित्र हैं, वो अभी स्वामीनारायण में साधु बने हैं।
And one of their rules is that they are not allowed to even touch money.
और वहां पर एक नियम है कि उनको धन को स्पर्श भी नहीं करना है।
And if by accident they even touch money, they have to for one day do fasting.
और अगर दुर्घटना पूर्वक उनसे धन का स्पर्श हो जाता है तो उनको एक दिन उपवास करना होगा।
Even in our own tradition, there is Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. He was traveling once with his servant.
और यहां तक कि हमारी स्वयं की परंपरा में हम देखते हैं कि श्री गौर किशोर दादा जी महाराज जब एक बार वो अपने सेवक के साथ में भ्रमण कर रहे थे, तो
And someone gave him some donation of some few rupees.
और किसी ने उनको कुछ दान दिया, कुछ रुपए उनको दिए।
And Gaurkishore Das Babaji went some distance and then he came back to that same person who gave the donation and he said, you take these rupees back, it's too much heavy. It's too heavy for me. I cannot hold this money.
और कुछ दूर जाने के पश्चात श्री गौर किशोर दास बाबा जी वापस आकर के वो एक रुपया उनको देते हैं उसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये आप अपने पास ही रखिए इसका भार बहुत है ये बहुत भारी है मैं इसको संभाल नहीं पाऊंगा
He looked at this person and said, how are you able to carry such a weight of thousands and thousands of rupees? Even these few rupees are too much heavy for me.
और वो कह रहे हैं उस व्यक्ति से कि तुम कैसे इतने धन को लेकर के कैसे रह पा रहे हो ये तो मुझे कुछ रुपए आपने जो दिए मैं इसका भी भार सहन नहीं कर पा रहा हूं
मनी इज वेरी वेरी डेंजरस
तो धन जो है वो बहुत ही खतरनाक है
इवन श्रील प्रभुपाद इफ यू सी हिज डायरीज देन एवरी टाइम ही वुड स्पेंड इवन 1 रुपी और 5 रुपीज ही वुड राइट इट डाउन ही वाज वेरी केयरफुल हाउ द लक्ष्मी द मनी वाज बीइंग स्पेंट
श्री प्रभुपाद जी की डायरी देखेंगे तो वहां पर वो नित्य जो दिनचर्या में खर्चे होते थे उसको लिखते थे 1 रुपए 5 रुपए कि कितना महत्वपूर्ण है 1-1 रुपए जो है उनके लिए
सो व्हाई इज मनी सो डेंजरस वन मे क्वेश्चन
तो कोई प्रश्न कर सकते हैं कि धन में क्या खतरा है
बिकॉज इन द भागवतम वी रीड अभ्यर्थितस्तदा तस्माय स्थाननी कलये दुदो द्युतम पानम स्त्रियम सुना यत्र अधर्मस चतुर्विधा परीक्षित व्हेन ही वाज चास्टाइजिंग कली देन ही सेड टू कली आई विल गिव यू 4 places टू रिजाइड द्युतम वेयर देयर इज गैम्बलिंग पानम वेयर देयर इज इंटॉक्सिकेशन स्त्रियम वेयर देयर इज इलिसिट सेक्स सुना वेयर देयर इज मीट ईटिंग
तो परीक्षित महाराज जब कली को उनको प्रेरणा दे रहे थे दंड दे रहे थे तब उनको स्थान दिया उन्होंने 4 स्थान पर रहने के लिए उनके राज्य में और वो क्या थे वो था कि अवैध स्त्री पुरुष संग और नशा और कोई जुआ नहीं खेलना स्त्री और
सेक्स गैम्बलिंग इंटॉक्सिकेशन मीट ईटिंग
और मांसाहार नहीं करना
So Kali looked at Parikshit and he said, you've given me these 4 places, but in your whole kingdom, none of these activities are going on. You must give me 1 place where I can stay. So Parikshit said to him, you can stay in the place where money, dhan, gold is stored because where money, dhan, gold is stored, all of these activities come about because this is where Kali resides.
तो कली जो है उनके पूरे राज्य में भ्रमण करके बोले कि आपके राज्य में तो ये चारों चीजें कहीं पर देखने को नहीं मिलती हैं तो ये चारों चीजें नहीं है तो फिर मुझे कहाँ पे स्थान मिलेगा और तब परीक्षित महाराज ने बोला कि आपको जहां पर धन या स्वर्ण जहां पर इकट्ठा हो वहां पर आप वास कर सकते हैं तो वहां पर कली का वास होता है
सो wherever there is money there will be degradation of one's consciousness the danger is there
तो जहां पर भी धन एकत्रित होगा वहां पर लोगों की चेतना में कमी आ सकती है
फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट लॉयर्स लॉयर्स हैव डिस्ट्रॉयड जस्टिस बिकॉज मनी कम्स इनटू द इक्वेशन व्हेन मनी कम्स इनटू द इक्वेशन ऑल ऑफ द जस्टिस गोज आउट करप्शन
जैसे हम देखें अगर वकील को तो जो वकील होते हैं जो वकालत करते हैं जो निर्णय होते हैं अदालत में वो जहां पर भी धन का मामला आता है तो धन की वजह से उनके निर्णय बदल जाते हैं तो ये भ्रष्टाचार धन की वजह से हो जाता है
Well, for example, if you look at the medical industry, it's supposed to help people to get more healthy, but when money comes into the equation, they can end up doing things which destroy people's health.
जैसे कि जो स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले जो विभाग होते हैं वो स्वास्थ्य की देखभाल करने के लिए बनाए गए हैं लेकिन जैसे ही धन का प्रलोभन या धन जब आ जाता है दृश्य में तब वो स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं सोचते
Or say for example, universities, they are meant to help people become very, very educated, but when money comes into the equation, they will even sacrifice on good education and schooling and studies are destroyed by the university themselves because of money.
उसी प्रकार जो विश्वविद्यालय हैं या जो शिक्षा के विभाग हैं वो अच्छी शिक्षा देने के लिए सबको उन्नति करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन जहां पर धन का खेल वहां पर शुरू हो जाता है तो वो भी हम देखते हैं कि शिक्षा का स्तर वो बहुत नीचे आ जाता है धन की वजह से.
We see that even in individual people, when money comes into the equation, then all their morals become destroyed.
और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए व्यक्तियों को तो उनके जीवन में भी जब धनी का जहां पर भी धन की बात आ जाती है तो उनका जो नैतिक मूल्य है उसका पतन हो जाता है.
In America, there is one city called Atlantic City, and in this city, there is full of casinos, gambling casinos, where people try to win money.
अमेरिका में एक जगह है Atlantic City, वहां पर सभी जगह पर लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने के लिए जाते हैं.
So, in there was one hospital in this Atlantic City, and all the nurses, they began to place bets on which patient in the intensive care would die first.
और वहां पे एक अस्पताल है उस Atlantic City में, वहां पर तो वहां पे उस अस्पताल में जो नर्सेज हैं वो नर्स लोगों ने आपस में दांव लगाना शुरू किया, जुआ खेलना. जो रोगी आते थे कि जो रोगी आईसीयू में होंगे कौन रोगी जल्दी मरेंगे उनके ऊपर वो दांव लगाते थे.
And one time they made a bet and it became so the stakes were so high, the money available was so high that one of the nurses pulled out the machine and killed someone so they would win the bet.
और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब वहां पर इतना ज्यादा वो ऊपर चला गया उनका जो दांव था कि उनको जीतने के लिए वो नर्स ने क्या किया, वो जो व्यक्ति के सब लगे थे सलाई उनके लिए उसको निकाल करके उनको मारना पड़ा.
So where money comes into the equation, people lose all sense of good discrimination.
तो जहां पर भी धन का खेल शुरू हो जाता है उनके अंदर अच्छे बुरे की जो भेद करने की क्षमता है वो लगभग कम हो जाती है.
You may have heard of the cobra effect.
कभी करें कि हमने शायद जो कोबरा प्रभाव होता है वो सुना होगा उसके बारे में.
Cobra effect means one time there was a problem that there were too many cobras, snakes, which were in one place. So the government, they decided we need to make a solution. There are too many cobras.
तो एक बार एक स्थान पर बहुत से कोबरा सांप थे, बहुत ही जहरीले सांप. तो वहां की सरकार ने सोचा कि इसके लिए कोई उपाय ढूंढना चाहिए.
So what they did is they put out a reward. They said, whoever brings us 10 cobras dead, we will give them some reward. And like this, they thought, then gradually all the cobras will die because people want the money, and then problem solved.
तो उन्होंने कहा, सरकार ने घोषणा की कि जो भी 10 सांप को मार के रोज लाएंगे उनको कुछ धन दिया जाएगा. उनको लगा कि इस प्रकार से इसका उपाय कर जाएगा, सब लोग धन के प्रभाव में सांप को जाएंगे मार के लाएंगे.
But instead, what began happening is that the people, they began to breed more cobras. They began to breed more cobras and then kill them so they get more money. But the number of cobras began increasing more and more.
इसका प्रभाव क्या हुआ कि लोगों ने और भी कोबरे को जो है वहां पे जन्म देना शुरू कर दिया, और कोबरे का वो उन्होंने और जन्म शुरू कर दिया, जिससे कि जितने कोबरा ज्यादा होंगे उतनी बार वो मार के ले जाएंगे, उतने उनको धन मिलेंगे. और समस्या बढ़ गई.
So therefore, money destroys everything.
तो इससे हम समझ सकते हैं कि धन जो है वो सब कुछ समाप्त कर देता है, धन का प्रभाव.
Now we have to make it very, very practical because all of you, all of us in the world, we are dealing with money every single day.
तो लेकिन हम लोग को बहुत ही व्यवहारिक रूप से सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि हम सभी लोग लगभग प्रतिदिन धन के साथ में हमारा संबंध संपर्क होता है.
So should we run away from money? Should we try to give up all of our money? But if we don't have money, how will we live?
तो क्या हमें धन को छोड़कर के भागना चाहिए, धन को स्पर्श नहीं करना चाहिए? कैसे हम धन के बिना कैसे जीवन यापन कर सकते हैं?
One time there was a picture of one yogi and there was a pile of money And he was going like this, no, 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 stay away.
एक बार एक छवि थी एक योगी की जहां पर कि उसके बगल में बहुत धन रखा हुआ था और वो ऐसे हाथ किए थे कि मुझे इसको स्पर्श नहीं करना है, मैं दूर रहूंगा मैं से।
So Srila Prabhupada, when he saw that, he said, you take a picture of me and I will be hugging all the money like this.
और श्री गोपाल जी कहा कि मेरी छवि आप लीजिए, मेरी पिक्चर, कि मैं इस सारे धन को इस प्रकार से आलिंगन करूंगा।
So that means Srila Prabhupada knew some art of how to deal with the money so that it could be used in Krishna's service and it won't lead to one's downfall.
श्री प्रभुपाद जी इसका मतलब जानते थे ये कला कि किस प्रकार से इस धन का सदुपयोग भगवान कृष्ण की सेवा में किया जाए और इस धन के प्रभाव से उनका पतन नहीं होगा।
So therefore, our acharyas explain that we have to use a principle called yukta vairagya.
इसलिए हमारे आचार्यगण समझाते हैं कि हमको एक सिद्धांत जिसको युक्त वैराग्य कहा जाता है इसका पालन करना चाहिए।
रूप गोस्वामी says, प्रपंचिकताय बुद्ध्या हरि संबंधु वस्तुना मुमुक्षुभि परित्यागो फल्गु वैराग्य कथ्यते। If there is something in this world, Hari Sambandhi Vastuna, everything has a connection to Hari. And if one gives something up, not knowing the connection to Hari that that thing has, then this is known as Falgu Vairagya.
तो यहाँ पर कहते हैं रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जब हम ये जानते हैं कि हर एक वस्तु ऐसी वस्तु जो भगवान से इसका संबंध हो और ये नहीं जानते हुए कि उनका संबंध भगवान से है और उसका हम त्याग कर दें तो इसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है।
Therefore, Rupa Goswami gives the other principle, Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagya Muchate. But when you know how everything in this world is ultimately related to Hari, and then you connect everything that you have to Hari, then this is known as Yukta Vairagya, and this kind of engagement of the material resource will not entangle you.
और वो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं इस प्रकार से श्री गोस्वामी पाद कि इस प्रकार से ये जानते हुए कि हर एक वस्तु जो भगवान के संबंध से संबंधित है और उसको ग्रहण करना अनासक्त होकर के भगवान की सेवा में लगाते हुए जिससे कि उससे बिल्कुल प्रभावित नहीं होंगे तब इसी को युक्त वैराग्य का सिद्धांत कहा जाता है।
Just like imagine you are walking on the road and someone drops some money.
जैसे कि हम अगर किसी रास्ते पे जा रहे हैं और वहां पे किसी का कुछ धन गिरा हुआ है।
So now you have three options. Option number one, you walk past the money. It's not mine. It's nothing to do with me. And you walk past and just forget about it.
तो एक चयन ये हो सकता है, एक विकल्प ये हो सकता है कि मैं वहां से गुजरूं और बिल्कुल बिना ध्यान दिए कि नहीं ये मेरा धन नहीं है, बिल्कुल देखना भी नहीं है और चले जाऊं वहां से।
Option two is that you pick up that money that that person dropped and you keep it for yourself.
और दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि उस धन को हम उठा करके अपने पास में रख लें, चाहे किसी का भी गिरा हो।
And the third option is that you pick up the money and then you find that person and give it back to them.
और तीसरा विकल्प ये हो सकता है कि हम ये पता करें, ज्ञात करें कि किसका धन गिरा हुआ है और वो उठा करके उस व्यक्ति को वापस करें।
So of the three, the final one is the best because you have returned the thing to its owner.
और तीनों विकल्प में जो सबसे आखिरी वाला विकल्प था, तीसरा विकल्प, ये सबसे अच्छा है जिसमें कि हम जानते हैं कि किसका धन है, उनको वापस दिए।
In the same way, everything in this world is ultimately coming from Krishna, and therefore we have to simply learn how to engage everything in Krishna's service.
उसी प्रकार से इस जगत में हर एक वस्तु भगवान कृष्ण से आई है, उद्भूत हुई है, वही उसके स्रोत हैं। इसे ये जानते हुए हमको सब कुछ उनकी सेवा में युक्त करना चाहिए।
So now when it comes to engaging your wealth in Krishna's service, I want to share with you two principles that are very, very important.
तो जब अब ये तथ्य आता है कि किस प्रकार से अपने धन को भगवान की सेवा में युक्त किया जाए, तो प्रभु जी कह रहे कि उसके बारे में मैं दो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत करूंगा।
Nalakuvara and Manigriva had wealth, but because they did not follow these two principles, that wealth led to pride, and that pride led to all sinful activity, and all that sinful activity led to their downfall.
क्योंकि नल कुबेर मणिग्रीव उनके पास बहुत धन था, लेकिन वो ये दो सिद्धांत नहीं जानते थे, इसलिए इस धन के प्रभाव से उनके अंदर अहंकार आ गया। उस अहंकार से गर्वित होकर के सारे पाप किए उन्होंने और पाप कर्मों के द्वारा उनका पतन हुआ।
The first very, very important principle to ensure that your dhan, your money doesn't lead to your downfall, first important principle is you must use wealth in service to others.
तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत, कि ये धन जो हमारे पास धन है उसको हमको दूसरों की सेवा में उपयोग करना चाहिए।
You must use the wealth to, first of all, worship Krishna. Second, serve the Vaishnavas. Third, you can use your funds in order to expand the activities of Krishna consciousness. And Vaishnavas can also spend their Lakshmi to try to help those who are in need and who require assistance. Of course, we will use the spiritual wealth, we will do that in a spiritual way, but these are the ways. So basically, service means serve Krishna, serve Vaishnavas, serve the mission of Krishna consciousness, and serve those who are needy.
तो धन का सेवा में उपयोग करने का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण की सेवा में, दूसरा वैष्णव की सेवा में, तीसरा इस दिव्य अभियान जो संघ है उनके प्रचार प्रसार को बढ़ाने के लिए, कृष्ण महाभारत प्रसार को बढ़ाने के लिए, और चौथा जिन लोगों को आवश्यकता है धन की उनको भी हम धन दे सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए।
There are two words, धन and अर्थ. धन means wealth. अर्थ means wealth which is used in a specific way which will then give you happiness and satisfaction in your life.
तो दो शब्द बताए जा रहे हैं यहाँ पर, धन और अर्थ। धन का मतलब जो धन है, और अर्थ का अर्थ है कि अगर उस धन को सही उपयोग किया जाए तो वो अर्थ प्रदान करेगा जिससे कि हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं।
So when one spends a portion of their income in service to others in charity, then this kind of dhan becomes earth. And this artha gives great satisfaction and happiness to the heart and creates purification.
तो जब अर्जित किया हुआ धन किसी की सहायता के लिए, जैसे अभी हमने सुना चार प्रकार से, जब वहां पर उसका उपयोग किया जाता है, यथोचित उपयोग किया जाता है, तब वो अर्थ बन जाता है, और वो अर्थ वो वास्तविक संतुष्टि और प्रसन्नता प्रदान करता है।
Bhagavatam explains that if you give your money in charity to someone who is not a brahmana, then the money will come back to you in the next life in the same proportion.
Bhagavatam mein bataya gaya ki agar aap kisi ko daan dete hain apna dhan jo ki brahman nahi hai, to usi anupat mein wo dhan aapko agle jeevan mein kahin na kahin wapas milega.
If you give your money, your dhan, to someone who is a half-educated brahmana, then in your next life, the dhan will come back to you double.
और अगर ऐसे व्यक्ति को जो कि आधा, मतलब आधा वो ब्राह्मण की योग्यता रखते हो, उनको आपने दिया है, तो उसका दो गुना हमको अगले जीवन में वो धन प्राप्त होता है।
If you give your money to a fully qualified brahman, in your next life, the money will come back 100 or 1,000 times more.
लेकिन अगर कोई योग्य ब्राह्मण है पूर्ण रूप से, उनको अगर हम कुछ दान देते हैं धन, तो अगले जीवन में बताया गया कि वो 100 गुना 1,000 गुना बढ़ करके वापस आता है।
And if you give your dhan, your money to a Vaishnav, a pure Vaishnav, sadhu, or for a Vaishnav cause, then you will get something beyond material benefits.
लेकिन अगर वो धन अगर वैष्णव या साधु की सेवा में दिया जा रहा है तब उसका जो प्रतिफल प्राप्त होगा अगले जीवन में उसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
So one must find out a suitable person to give charity to and then offer that charity.
इसलिए एक योग्य व्यक्ति को हमें ढूंढना होगा जिनको हम ये दान दे सकें और उनको हमें अपना धन का दान देना चाहिए।
Bhagavatam explains that in Kali Yuga every ashram has one defect.
कलयुग में बताया गया कि भागवत में बताया गया कि हर एक युग में एक आश्रम में जो है एक दुष्प्रभाव दिखता है, एक कमी दिखती है।
The problem with brahmacharis is that they are not clean.
जैसे कि कलयुग में जो ब्रह्मचारी हैं बताया गया उनके बारे में कि वो शुचि बहुत साफ नहीं रखते अपने आप को।
Problem with vanaprastas in Kali Yuga is that they never give up their household life.
और वानप्रस्थ के साथ में ये समस्या है कि वो अपने गृहस्थ जीवन को जल्दी छोड़ते नहीं हैं।
Problem with sannyasis is that they accumulate many things in Kali Yuga.
और सन्यासी में समस्या ये है कलयुग में कि वो बहुत सी चीज एकत्रित करते हैं।
And problem with grihasthas in Kali Yuga is that they don't give charity.
और कलयुग के गृहस्थों के साथ में समस्या ये है कि वो दान नहीं देते।
Therefore, the first principle, very important principle, if you want to ensure that the dhan doesn't cause your downfall, is that you must engage it in service.
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है कि अगर धन जो हम एकत्रित किए हैं वो हमारे पतन का कारण नहीं बने तो हमको निश्चित रूप से यथा जो यथोचित स्थान है वहां पर हमें दान देना चाहिए।
The second very, very important principle is that we must embrace simple living, high thinking.
और दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमको निश्चित रूप से सादा जीवन और उच्च विचार इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए।
In Bhagavatam, Srila Prabhupada writes that every illness and every anxiety comes from material extravagance.
भागवतम में व्याख्या की गई है कि हर एक जो चिंताएं हैं वो हमारे जो दिखावे का जीवन है उससे आती हैं।
When we accumulate more than necessary, when we live in a more opulent way than is required, then all of that opulence and all of that enjoyment stops us from engaging in spiritual life in a powerful way.
तो जब हम जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज्यादा हम बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना शुरू करते हैं तो वो हमारे आध्यात्मिक जीवन में बहुत ही शक्तिशाली रूप से प्रभाव डालते हैं, हमको बाधा डालते हैं।
Therefore, Krishna explains to Arjun, Bhogeshwarya prashaktanam taya parit chetasham vyavasayatmika buddhir samadho nuvidhiyate. If one is seeking bhoga and aishwarya, enjoyment and opulence, one is trying to increase vyavasayatmika buddhi samadho nuvidhiyate, the resolute determination for bhakti does not take place.
इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जब जिनके अंदर भोग और ऐश्वर्य की इच्छा बनी रहती है तो उनके अंदर भगवान की भक्ति करने के प्रति जो एक निष्ठ व्यवस्थापिका बुद्धि चाहिए वो नहीं हो पाता।
क्वीन कुंती, आई मेंशन द वर्स इन द बिगिनिंग, शी सेज निर्वारहत्यपि दातुं वै त्वं अकिंचन गोचरम। यू कैन ओनली बी अप्रोच कृष्णा by those who are akinchana. Akinchana means those who are not seeking material opulence and enjoyment beyond what is necessary for their sustenance, preservation.
इसलिए कुंती महारानी जैसे हमने पहले श्रवण किया श्रीमद् भागवत में कहती हैं वो कि अकिंचन गोचरम जो जिनके अंदर भौतिक इच्छाओं को या भौतिक जो ऐश्वर्य हैं वो जितना उनकी आवश्यकता है उससे अधिक उनको नहीं चाहिए उनके द्वारा ही आप प्राप्त किए जाते हैं।
As soon as we begin to complicate our life more with different material objects And as soon as we begin to cultivate more material desires, then it takes our attention away from the real business of life.
तो जैसे ही हमारे जीवन में हमारी चेतना भौतिक वस्तुओं को और ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करने के बारे में प्रयास करते हैं, सोचते हैं, इच्छा करते हैं, तो ये हमको आध्यात्मिक जीवन से दूर लेके जाती है.
One time, one sadhu, he went to the bank of the Ganga and he had nothing. He just had his japa mala and he said, now I will just sit down and I will chant Krishna's names.
एक बार एक साधु गंगा के तट पर जाते हैं, उनके पास खाली जप माला होती है, तो वो वहां पर बैठ के कहते हैं कि अब मेरे पास केवल जप माला है, मैं यहाँ पर शांतिपूर्वक बैठ के जप करूंगा.
As he began chanting Hare Krishna, in his mind the thought went that I am wearing one dhoti, but tomorrow what will I wear? So he said, let me at least get one extra set of dhoti, so that at least tomorrow I will have something to wear. So he got one set of dhoti, he washed it and he kept it on the line and he sat down to chant.
तब उनके जब वो जब कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र, उनके मन में ये विचार आया कि मेरे पास एक ही धोती है तो कल मैं क्या पहनूंगा, तो जा करके वो एक और धोती लेकर के आए और उसको साफ करके अपने पास में रख दिए कि कल मेरे पहनने के काम आएगा ये.
So then he began chanting again Hare Krishna and as he was chanting he heard a sound and he opened his eyes and he saw that there was one mouse rat and it was chewing at his dhoti, making a hole in it, the one that was on the line.
और तब वो आके फिर जब जब कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का, तो फिर उनके मन में विचार आया, उन्होंने एक आवाज सुना, तो देखा तो बगल में तो एक चूहा था, वो उनके धोती को खा रहा था.
So in his mind he thought, my, I had this dhoti, I now have to protect this dhoti from this rat, otherwise I'll have nothing to wear tomorrow. So he said, okay, let me go and get one cat, because then the cat will keep the rat away and then the dhoti will be okay and then I can chant and tomorrow I'll have a dhoti to wear.
तो उनके मन में ये विचार आया कि ठीक है, मैं तो धोती जो मैं लाया था उसकी रक्षा करने के लिए, अब मुझे लगता है कुछ और करना पड़ेगा. तो सोचे कि मैं एक बिल्ली लेके आता हूँ, तो बिल्ली आएगी तो चूहा दूर हो जाएगा और मेरी धोती की रक्षा होगी जो मैं कल पहनूंगा.
So then he began, he cat was there, he began to chant Hare Krishna and as he was beginning to chant then the cat started crying meow meow.
और जब वो फिर जब करने के लिए बैठे उस बिल्ली को ला करके, तो कुछ समय के बाद बिल्ली की आवाज उनको म्याओ म्याओ सुनाई पड़ी.
So then he realized, my God, this cat, she also needs some milk, otherwise she will not be satisfied. So now I need to get some milk. So where does milk come from? Then I need a cow. So then he went to the market and then he got a cow.
और तब वो जब उनको लगा कि अब तो ये जो अगर ऐसी चिल्लाती रहेगी तो मैं जब भी नहीं कर पाऊंगा, तो उसको शांत करने के लिए उसको दूध चाहिए, और दूध के लिए वो गए बाजार में और एक गाय लेकर के आ गए कि गाय से दूध निकाल करके वो बिल्ली पिएगी.
Then he began to sit down and chant Hare Krishna, but then the cow began to mooing. The cow was mooing because it needed to be milked by someone.
तो फिर जब बैठ के वो जप कर रहे थे हरे कृष्ण, तब तक देखा उन्होंने कि गाय जो वो चल रही थी अपने आप इधर उधर, क्योंकि गाय को कोई दूध निकालने के लिए चाहिए था.
So the story goes on and on and on like this. Then he had to get someone to milk the cow. And then in order to pay that person to milk the cow, he himself had to go out and get a job. And like this, there was no time left for chanting.
तो इस प्रकार से कथा आगे बढ़ती रहती है. उसके बाद किसी व्यक्ति को लेकर आए गाय को देखने के लिए, उसके लिए उनको फिर कुछ काम करना शुरू कर दिया, और उसके पश्चात उनके पास समय ही नहीं बचा जप करने के लिए.
So the moral of the story is that somehow or other we have to try to keep our life simple so that we have time and we have the peace of mind to do our sadhana.
तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये तत्व बता रहे प्रभु जी कि हम लोग को अपना जीवन इस प्रकार से ढालना होगा, इतना सादा रखना होगा कि शांतिपूर्वक जप और अध्ययन श्रवण करने के लिए हमारे पास समय हो.
Manigriva and Nalakuvara, they did not keep a simple life.
लेकिन नल कुबेर मणिग्रीव उन्होंने अपना जीवन सादा नहीं रखा.
They were enjoying in the most extravagant way with many, many ladies.
वो लोग बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण, वो बहुत ही अप्सराओं के साथ में भोग ऐश्वर्य कर रहे थे.
And in this way, they became more and more diverted from their spiritual purpose.
और इस प्रकार से वो जो आध्यात्मिक उद्देश्य था, उससे काफी वो विचलित हो गए.
So please think very deeply. If you use your money in service, and if you ensure that in your life you embrace simplicity, then even though you live a life in which you are in contact with money on a daily basis, that money will not take you away from Krishna, but rather that money will help you to come closer to Krishna.
तो ये बहुत ही व्यवहारिक दृष्टिकोण बताया प्रभु जी ने कि अगर हम ये दो सिद्धांत का पालन करें, एक तो धन को भगवान जो सेवा बताई गई उस सेवा में युक्त करें, और दूसरा कि अगर हम अपना जीवन बहुत सादा रखें, तो इस प्रकार से अगर हम प्रतिदिन अगर धन के साथ में हमारा संपर्क हो भी रहा है, तो भी वो धन हमारे पर ऐसा कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा.
And I'll end on one final point and then I'll open up for any questions you may have. One other thing to realize is that Krishna may also help us by sometimes taking away our wealth.
तो एक और भी मैं इस पे अभी चर्चा करूंगा, उसके बाद मैं प्रश्नोत्तर के लिए समय दूंगा. तो एक बात हमें और अनुभूति करनी चाहिए कि कभी कभी भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे धन को हर लेते हैं, जिससे कि हम और उच्च अनुभूति कर सकें.
In the Bhagavatam, Srila Prabhupada once quoted a very, very famous verse. Yashyaham anugrinami harishye tadhanam shane tato dhanam chajantasya svajana dukhadukitam. Where Krishna says, when I give my special mercy, my real anugraha, my real mercy to someone, then I may take away all of their wealth from them.
तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर ये श्लोक कोट करते हैं श्रीमद् भागवतम से, जहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब मैं किसी के ऊपर विशेष अनुग्रह कृपा करता हूँ, तो उनका सब धन हर लेता हूँ, जिसके पश्चात उनके सभी स्वजन उनसे दूर हो जाते हैं, और तब वो व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरी शरण ग्रहण कर लेता है.
Krishna is a thief, and Bilva Mangal Thakur once wrote a song called Chaurashtakam, the 8 verses of the thief.
तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी वो दक्ष चोर हैं, और बिल्वा मंगल ठाकुर जी ने बहुत सुंदर उनके ऊपर प्रार्थनाएं लिखी हैं, जिसको चौरास्तकम कहते हैं, 8 जिसमें पद्य हैं.
व्रजय प्रशीदाम नवनीत चौराम गोपांगनानाम चदुकुल चौराम अनेक जन्मार्जित पाप चौराम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि. He says, Krishna is the biggest thief in Vrindavan because he takes away all the butter. Krishna steals the clothes of the gopis. And Krishna may also steal the reactions that you have accumulated for many, many lifetimes.
तो वहां पर वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में सबसे बड़े चोर हैं. वो माखन चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्र हरण करते हैं, और उसके साथ ही साथ कई जन्मों के द्वारा संचित जो कर्म है उसको भी वो हर लेते हैं.
And sometimes Krishna may take away people around you. Sometimes Krishna may take away your reputation. Sometimes Krishna may take away your health. And sometimes Krishna may also take away your wealth.
तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको हमसे हर सकते हैं, हमारी जो छवि है उसको हर सकते हैं, और हमारे धन को हर सकते हैं.
But why does Krishna take all of these things away? Because actually he wants to give us the greatest wealth.
तो क्यों भगवान श्री कृष्ण हमसे ये सब हरते हैं? क्योंकि वो हमको सर्वोत्तम धन देना चाहते हैं.
Physical wealth like money is a very low type of wealth.
जो भौतिक धन है ये बहुत ही निम्न स्तर का एक ऐश्वर्य कह लीजिए है.
higher than physical money, the higher wealth, the more valuable than that is knowledge.
और धन से ऊपर उस तर का जो धन है, धन से ऊपर जो ऐश्वर्य है वो है ज्ञान.
Higher than knowledge, the next type of dhan that's more valuable than knowledge is sadhana.
और ज्ञान से भी ऊपर का जो धन है वो है साधना.
Sad dhana iti sadhana, that thing which will ultimately awaken your eternal wealth is known as sadhana.
तो सद धन इसको साधना कहा जाता है, जो कि हमारे वास्तविक जो सत्य जो शाश्वत धन है उसको जागृत करेंगे वो.
So higher than physical wealth is knowledge, higher than knowledge is sadhana, and higher than sadhana is bhakti.
तो भौतिक धन से ऊपर ज्ञान, ज्ञान से ऊपर साधना, और साधना से ऊपर है भक्ति.
So one who has prema bhakti, they are the most wealthy.
तो जिनके पास प्रेम भक्ति है वो सर्वोच्च धनी व्यक्ति है.
Because our acharyas explain golokera prema dhan hari naam sankirtan, this prema dhan has come from a different world.
क्योंकि हमारे आचार्यगण व्याख्या करते हैं कि ये प्रेम धन जो है वो अलग लोक गोलोक से आए हैं वो.
And it has come to us in the form of the holy name of Krishna.
और ये हमारे पास भगवान नाम भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के रूप में आए हैं.
So one who has this bhakti, they are the most wealthy.
तो जिनके पास ये प्रेम भक्ति है वो सर्वोत्तम धनी व्यक्ति है.
So sometimes Krishna may take away the lower types of wealth so that we can completely focus on finding the highest type of wealth.
तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण ये हमारे जो निम्नतम स्तर के धन है उनको हमसे हर लेते हैं, जिससे कि हम पूरा ध्यान वो उच्च स्तर के धन पर लगा सके.
So therefore, when we become devotees of Krishna, we have to beware because Krishna is a thief.
तो जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आते हैं तो हम समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वो एक चोर हैं और इस प्रकार से व्यवहार कर सकते हैं.
But when he takes something away from you, ultimately he gives you something much more valuable.
तो अगर वो कुछ हमारे पास से हटते हैं तो इसका अर्थ है कि वो हमें कुछ परम वस्तु प्रदान करने वाले हैं.
And with this, I will conclude today. So I will summarize everything that we talked about today.
तो इसके द्वारा मैं यहाँ पर इसको विराम करूंगा और अभी मैं निष्कर्ष रूप में जो हमने आज चर्चा की है उसको अभी हम सार रूप में समझेंगे.
Firstly, we explained about how Nalakuvara and Manigriva, the main problem that they had was they became proud because of their wealth.
तो पहले हमने ये चर्चा की कि नलकुबेर और मणिग्रीव जो मुख्य समस्या उनके साथ में थी वो इसलिए कि उनके पास बहुत धन था और उसके द्वारा वो गर्वित हो गए थे.
Then second, we talked about how in all world religions, in all sampradayas, the teachers, the sadhus, the gurus are always telling us to beware of wealth.
और दूसरा ये भी हमने सीखा कि सभी धर्मों में, सभी समुदाय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि हम ज्यादा धन से सावधान रहें.
Thirdly, we talked about how practically we see in our own life that when money is there, then our morals, our ethics, our consciousness can sometimes become very compromised.
और तीसरी चीज हमने सीखी कि किस प्रकार से हम देखते हैं अपने जीवन में, व्यक्तिगत व्यवहार में देखते हैं कि जब भी धन का प्रभाव बढ़ता है तो हमारे नैतिक मूल्य, हमारी चेतना, हम देखते हैं जो नियम विधि है उससे हमको समझौता करना होता है.
Then fourth, we discussed that, but as devotees, we must interact with wealth. Therefore, when we interact with wealth, we should always make sure of two things: that we are using our wealth in service, and the second thing is that we are living simple life.
और चौथी चीज जो हमने सीखी कि हम देखते हैं कि भक्तों के जीवन में धन के साथ में संपर्क बना रहता है दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो कैसे उससे बच सकते हैं उसके प्रभाव से. दो सिद्धांत हमें अपनाने होंगे, एक तो धन को भगवान की सेवा में युक्त करना होगा, जो हमने सीखा चार प्रकार की सेवाएं, और उसके साथ ही साथ हमको अपना जीवन बहुत ही सादा रखना होगा, सादा जीवन, उच्च विचार.
And final thing we talked about is that Krishna, sometimes he will also take away your wealth because he wants to give you something higher. Higher than wealth is knowledge. Higher than knowledge is sadhana. And higher than sadhana is bhakti. So one who ultimately has bhakti is the most wealthy.
और हमने अंत में ये सीखा कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण स्वयं कभी हम देखते हैं कि वो सब कुछ हर लेते हैं, लेकिन वो हमारी जो निम्नतम स्तर के धन है उसको हरते हैं. जो भौतिक धन है उससे ऊपर है ज्ञान, और उससे ऊपर है साधना, और उससे ऊपर है प्रेम. तो भगवान निम्नतम स्तर के धन को हर करके हमको उच्चतम स्तर के धन को पाने के लिए अवसर देते हैं.
So with these points, I will finish here. Maybe we have some time, 10 minutes for questions, if anyone has any question. Or you can make a comment, you can put it on the chat, or I think they can unmute as you like.
तो यहाँ पर प्रभु जी विराम देते हैं, और अभी हमारे पास समय है, और किसी की कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, या कोई टीकाएं हैं, तो आप अपना हाथ उठा सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा, और किसी कोई जिज्ञासा या प्रश्न है तो. Padmavati Mataji, please, now you can unmute yourself and ask the question.
Hey Krishna Prabhuji, pranams. Prabhuji, you were just talking about health. You said that if someone loses the health, you need to think that it is the mercy of Krishna that one has lost the health. But is it not that when one has lost the help, do we not tell him that go and pray Krishna for your help? Or you can see that there are certain slokas or certain mantras which are very much there in Vedas and other religious texts which says you can chant these mantras and regain your health. So how can this be understood, Prabhuji? So can I say that it is mercy of Krishna that I am in bad health and just leave it, or go about doing things which can boost my health?
Thank you. Prabhuji, you want to repeat the question?
Yeah. So, प्रश्न ये था कि माताजी पूछ रहे हैं कि आपने बताया कि भगवान जो है कभी कभी हमारे माताजी बताया कि स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ के बारे में, कि वो हर लेते हैं. तो जब यहाँ पर हम धन की बात कर रहे थे, माता जी बताया कि स्वास्थ्य के बारे में, तो क्या उसके बाद हमको ये सोच करके कि ये भगवान की कृपा है, हमको चुपचाप ऐसे बैठना चाहिए, या वेदों में और हम देखते हैं और भी धार्मिक शास्त्रों में ऐसा ज्ञान दिया गया है जहाँ पर कि कुछ मंत्रों के उच्चारण से हम लोग पुनः अपने स्वास्थ्य को ठीक करते हैं या करने का प्रयास करते हैं, तो हमें ऐसा करना चाहिए या हमें जैसा भी स्थिति आ रही है उसको हमें चुपचाप भगवान की कृपा समझ के बैठना चाहिए?
So Mataji, the first thing to understand is Krishna, whatever he does to bring us closer to him.
तो सबसे पहली बात हमें समझनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण जो कुछ भी करते हैं हमारे जीवन में, वो हमको उनके और समीप लाने के लिए करते हैं.
So if you undergo some health difficulty in your life and it means you pray more, you become more urgent, you become more serious about your spiritual life, you become more desperate in the way that you chant, then Krishna has done his job.
So, जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण ने कुछ आपके अगर हमारा कुछ स्वास्थ्य ऐसा गड़बड़ हुआ है और उसमें हम जैसे आपने बताया कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं और हम बड़ी गंभीरता के साथ में वो जप कर रहे हैं भगवान के समीप में, इसका अर्थ है कि हम भगवान के समीप जाने का प्रयास कर रहे हैं, इसका मतलब भगवान ने अपना कार्य कर दिया है.
So whether we are in good times or bad times, difficulty or success, we're always trying to pray more to Krishna. As Bhaktivinoda Thakur says, Maro bhi, rakho bhi, jo icha tohar, whether you kill me or whether you save me, it doesn't matter, I want to serve you. So even in health difficulty, if we approach Krishna, that is very good.
तो भक्तिमय ठाकुर महाराज भी कहते हैं, और किसी भी स्थिति में बहुत अच्छा समय हो जीवन में, बुरा समय हो, लेकिन हमें भगवान के समीप ही जाना चाहिए, वही हमारे एक आश्रय है. तो अगर हमारा स्वास्थ्य में भी कुछ समस्या है और हम भगवान के समक्ष जाके प्रार्थना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ये.
Why do you want good health? If you want good health so that you can have more years to do more Vaishnav seva, to do more Krishna seva, to advance more in spiritual life, then that is very good. That is a very good prayer. Then you should definitely pray for good health.
तो हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, मतलब क्यों हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, क्या हम उसके पश्चात और भी हमारे जीवन में समय हो जिससे हम वैष्णव की सेवा कर सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, भगवान की सेवा कर सकें, तो ये बहुत अच्छी प्रार्थना है, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए.
Even when Srila Prabhupada was sick, he said the devotees could pray for him to get better.
जैसे श्री गोपाल जी जब थोड़े बीमार थे तो उन्होंने भक्तों से, अनुयायियों से कहा कि आप लोग प्रार्थना करो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए.
I think I mentioned this last time. In the prayer, he made a few extra words. He says, Krishna, if you so desire.
और प्रभु जी ने पिछली बार भी ये बताया था, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, कि प्रभु जी ने कहा था कि आप ऐसे प्रार्थना करिएगा कि भगवान कृष्ण यदि आपकी इच्छा हो तब ऐसा करिएगा.
So that means the devotee realizes if Krishna answers the prayer by improving my health, then very good. And if Krishna doesn't answer my prayer by not improving my health, then that's also very good because that means he has some bigger plan.
तब कहते हैं कि अगर भगवान हमारी प्रार्थना सुन के अगर लगता है कि उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को ठीक कर दिया तो ये भी बहुत अच्छा है, और अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं भी हुआ तो ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका मतलब भगवान के पास कुछ और बड़ी योजना है मेरे लिए.
So in conclusion, Mataji, point number one, Our health does decline because of Krishna's arrangement. Number one.
तो पहला बिंदु ये है कि भगवान श्री कृष्ण की योजना के अनुसार हो सकता है कि हमारे स्वास्थ्य में प्रभाव पड़े.
Number two, that doesn't mean you can't pray to Krishna to improve your health. You can pray to Krishna, no problem.
और इसका अर्थ ये नहीं कि हम भगवान से प्रार्थना नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर सकते हैं.
The third thing is that realize if Krishna improves your health or doesn't improve your health, either way is Krishna's mercy.
और तीसरा चीज ये अनुभूति करना कि अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है या नहीं होता है, ये भगवान की कृपा समझ के हमको ग्रहण करना चाहिए.
And finally realize that in that situation, whether it's an improvement or no improvement, ultimately we must surrender to Krishna, because even if your health improves, the nature of the world is that anything could change in a few moments again.
और चौथी चीज, चाहे हमारा स्वास्थ्य कैसा भी हो, हमको भगवान के प्रति शरणागत होना चाहिए, क्योंकि अगर स्वास्थ्य ठीक भी हो गया तो भी हम देखते हैं संसार में सब चीजें किसी भी क्षण परिवर्तित हो सकती हैं.
This is, I hope that helps.
Thank you, Prabhu. Thank you so much.
Thank you.
Yashomatin Prabhuji, you have some questions? Please go ahead, Prabhu.
Yeah. Hare Krishna, Dharanath Prabhu. Prabhu, in the beginning, you started with one of your friend who is from Swaminarayan Sampradaya. Mm. And you told about their way of how they... takes it like direct our is like everything in life goes without the money, without this wealth, it's all over the world and everything is there, so everything is coming from money. So just touch the money. Is there any teaching for ourselves also from there, that way of living?
तो प्रभु जी का प्रश्न ये था, बीच में हम लोग कुछ आपको नहीं सुन पाए प्रभु, तो प्रश्न ये था कि जो हम समझ पा रहे हैं कि आपने बताया शुरुआत में कि कैसे आपके जो मित्र थे स्वामीनारायण में जो युक्त हो गए थे संघ में, जहां पर वो लोग धन को स्पर्श भी नहीं करते, लेकिन हम देखते हैं कि उनके बहुत ही विशाल विशाल मंदिर और बहुत ही बड़े बड़े स्थानों पर काफी धन का प्रभाव दिखता है, लेकिन वो स्वयं धन को स्पर्श नहीं करते, ऐसा बताया अभी आपने बताया. तो हम लोग के लिए भी इस प्रकार से कोई संदेश दे सक, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
I couldn't hear everything, but I think I got the grasp of the question. Is there anything we can learn from the Swaminarayan? This is the question, no? Prajprakash Prabhu?
Yes, Prabhu. This is what I also gathered, Prabhu, because in between, I lost also, yes, Prabhu.
Okay, all right, no problem. Prabhu Yashomati Nandan Prabhu, thank you for your question. Prabhuji, I gave you the example of someone in the street who has dropped their money.
So Prabhuji keh rahe hain ki dhanyavad aapke prashn ke liye. Maine udhahan diya tha ki jaise kisi vyakti ka dhan gir gaya hai raaste mein.
So one person takes the money and runs away and enjoys it. They are the worst.
Jo vyakti dhan ko leke jaate hain, bhog karte hain, wo sabse bure hain.
Better than that is the person who walks past and says, it's nothing to do with me, I don't touch this.
Aur unse acche wo hain jo jaate hain, kehte hain ki ye mera nahi hai, mujhe bilkul spash nahi karna hai.
But the highest, the best is the person who picks it up and gives it back to the owner.
Lekin usse bhi uttam, sarvottam wo hain jo jante hain ki dhan kiska hai aur usko wo dete hain wo.
And if they're a pure devotee, then they'll pick it up, they'll give it to the owner, and then they'll tell the owner, by the way, now you make a donation to Krishna for me giving you this help.
So this
concept of not touching money is like the person who walks past the money and doesn't do anything.
तो ये विचार कि मैं स्पर्श नहीं करूंगा ये उस प्रकार से है जैसे कि जो व्यक्ति कह रहे हैं कि वहां से जा रहे हैं और देख करके उसको स्पर्श नहीं कर रहे हैं.
This is better than the materialistic person.
ये निश्चित रूप से भौतिकवादी लोग से अच्छे हैं.
However, there is a higher type of renunciation where we connect the dhana to the original owner, and this is known as yukta vairagya.
लेकिन जैसे अभी हमने पढ़ा अभी सुना अभी हमने प्रभु से कि युक्त वैराग्य तो उससे भी ऊंचा जो सिद्धांत है कि जानते हुए किसका है उनको देना या मतलब भगवान की सेवा में लगाना वो है युक्त वैराग्य.
वन टाइम श्रील प्रभुपाद गेव संन्यास टू वन डिसिपल.
एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने एक अपने शिष्य को संन्यास का दीक्षा दिया.
So the disciple came to him with his danda. He was very happy and he said, "Srila Prabhupada, I'm so happy. Now I am a sannyasi, I will just go and preach."
तो वो बड़े प्रसन्न हुए कि प्रभुपाद जी ना अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ उनको अब दंडा भी मिल गया दीक्षा के समय कि अब मैं जाकर के प्रचार करूंगा.
Prabhupada said, "This is nonsense. I am a sannyasi. You should be like me. In the morning I give the Bhagavatam class and in the afternoon I go to the bank."
तो प्रभुपाद जी कहा कि ये बात उचित नहीं है. देखो मैं भी सन्यासी हूँ, मैं सुबह भागवतम की क्लास देता हूँ और दोपहर में मुझे बैंक जाना पड़ता है.
Why is Prabhupada going to the bank? Because he's dealing with so much money, but what for? What purpose? To serve Krishna.
क्यों प्रभुपाद जी को जाना पड़ रहा है? क्योंकि उनको इतने धन का आदान प्रदान करना होता था भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए.
One time one devotee was in Vrindavan and he was thinking about how to fundraise, how to find money for the whole Krishna Balaram project.
तो एक बार वृंदावन में एक भक्त सोच रहे थे किस प्रकार से कृष्ण बलराम मंदिर के लिए कैसे धन की व्यवस्था की जाए.
He went to Prabhupada once. He said, "Prabhupada, I am in Vrindavan and everywhere I go the Brajabasis are saying Radhe Radhe, but in my mind I am only thinking rupee rupee."
तो बोले कि प्रभुपाद जी मैं वृंदावन में हूँ जहां पर जाता हूँ सब लोग राधे राधे बोल रहे हैं लेकिन मेरे मन में चल रहा है कि धन धन कहां से रुपया मिलेगा कहां से रुपया मिलेगा.
So Prabhupada laughed. He said, "You carry on thinking rupee rupee because this rupee rupee is for Krishna Krishna and for all of that seva. Ultimately you will go radhe radhe, ultimately you will go to Vrindavan, but for now you focus on rupee rupee for the purpose of Krishna's seva."
तो प्रभुपाद जी हंसे और कहे कि आप कृपा करके ऐसे ही बोलते रहिए, आप इसी बारे में सोचते रहिए रुपया रुपया, क्योंकि रुपया रुपया आप कृष्ण कृष्ण के बारे में सोच के लिए विचार कर रहे हैं और इस प्रकार से करते हुए आप अंततः राधे राधे उनके पास जाएंगे.
So the teaching we take from the Swaminarayans is that we should be very very careful. Money is very very intoxicating. However, we don't try to ignore it. Rather, we just use it in service.
तो हम क्या सीख सकते हैं स्वामीनारायण से कि हमको भी बहुत चाहिए क्योंकि धन जो है वे बहुत ही ये नशा प्रदान कर सकते हैं लेकिन हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक जानते हुए कि कैसे इसको भगवान के सेवा में लगा सकते हैं, हमको भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए।
I hope this is okay. Hare Krishna. Prabhuji, you tell me when to stop. It's 4:50. I mean 7:50. 7:15 for you? I don't know.
Yes, Prabhu.
You tell me when to stop.
Yes, Prabhu. I think Prabhu will take one more question, the last question, and then we can stop. प्रेम निकंद प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न है? आपने हाथ उठाया था अभी। प्रेम निकंद प्रभु, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
प्रभु, जैसे अभी आपने बताया था कि भक्तों को अपना धन को भगवान का सेवा में लगाना चाहिए और सारा जीवन उसको विचार करना चाहिए, तो इसे देखना था कि जो मतलब लोग जो है तो हम लोग का ज्यादा पैसा हम लोग कमाने पड़ते हैं, तो इस पैसा में अगर हम भगवान का सेवा में अगर लगा देंगे तो हमारे जो परिवार है और घर में बहन हो चाहे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हो या परिवार हो, तो इसको किस तरह संभाला जाएगा अगर कुछ पैसा को हम भगवान के सेवा में लगाए तो इसको हम कैसे कमा सकते हैं?
Prabhu, the question is that we should use our wealth.
Prem Niketan, can you mute while Prabhuji is speaking? Yeah.
Yes,
Prakash
Prabhu. Yeah, Prabhu. He asked the question, Prabhu, that you have you mentioned that we should use our wealth in the service of Krishna. And for the devotee, where we have certain responsibilities for the family members and relatives, so what principle we should follow, that how we should proportionate the wealth which we are earning, that as you mentioned it should be used for Krishna and devotee service, but we have certain responsibilities, so how to look into this?
Yes, this is very common question. Of course, Srila Prabhupada often gave the example of Rupa Goswami.
तो ये सामान्य प्रश्न पूछा जाता है कई बार इस प्रकार का प्रश्न, और प्रभु जी कह रहे हैं कि श्री प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी जी का उदाहरण प्रस्तुत किया है।
That Rupa Goswami, when he divided his wealth, then he gave 50% of his wealth first to the Vaishnavas.
जब उन्होंने अपने धन को वितरित किया रूप गोस्वामी जी ने, तो उन्होंने 50% वो भक्तों में भगवान की सेवा के लिए,
then he gave 25% to relatives,
और 25% अपने रिश्तेदारों को,
and then he kept 25% for emergencies,
और 25% वो अपने आपातकालीन स्थिति के लिए रखा।
So one may have to adjust according to their particular life situation.
लेकिन सभी को अपने अपने स्थिति के अनुसार उसको वितरित करना होगा।
The principle of Shastra must always be followed, but the details may change according to time, place, and circumstance.
तो शास्त्रों का सिद्धांत निश्चित रूप से हमें हमेशा पालन करना चाहिए, लेकिन उसका विस्तार जो है, उसके जो और भी विस्तार हैं, वो देश, काल, पात्र के अनुसार करने चाहिए।
As a grihastha, you have to care for your family. You have to provide for your children. And you also have to save some for the future and have some security.
तो ग्रस्त होने के नाते हमको निश्चित रूप से अपने परिवार का ध्यान, रिश्तेदारों का, और उसके साथ ही साथ में हमें कुछ आपातकालीन धन वो भी रखना होगा भविष्य के लिए.
Then outside of that, you must serve the Vaishnavas, you must serve the mission, you must serve those who are in need.
और उसके साथ ही साथ में हमको वैष्णव की सेवा, भगवान की सेवा, और इस संघ जो दिव्य अभियान है प्रभुपाद जी का प्रचार प्रसार, उसमें और जिनको आवश्यकता है, जो लोग आवश्यकता में हैं, उनको भी हमें देना चाहिए।
I'll give you two interesting principles when it comes to charity.
तो प्रभु जी कह रहे कि मैं दो रुचिकर इसमें सिद्धांत प्रस्तुत करूंगा जब दान की बात आती है।
First principle is that sometimes you may feel I cannot do this donation, is too much, is too difficult, but Srila Prabhupada said, charity is only charity when you feel the pinch. I don't know if you can translate this.
So, कभी कभी हम लोग कहते हैं कि अरे ये ज्यादा दान है, ये मैं नहीं दे पाऊंगा, लगता है ये ज्यादा हो रहा है, मेरे जो मैंने सोच रखा था उससे ज्यादा है. लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि दान वही है जिसमें कुछ दर्द महसूस हो.
Little bit must be there. If it's too easy, then it's not charity. Charity must feel little bit in the heart. You must feel a little bit difficult.
तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आसानी के साथ में कुछ दिया जा रहा है तो वो दान नहीं है. दान देने का अर्थ है कि हृदय के अंदर कुछ ऐसे कुछ चुभना चाहिए कि हाँ मतलब ये ज्यादा जा रहा है.
But I'll tell you second amazing principle that when you from your heart genuinely desire to serve the Vaishnavas or serve the mission in a way, even sometimes if you may not have all the resources to complete your donation, Krishna will make all arrangement.
और दूसरा सिद्धांत ये है, प्रभु जी बता रहे हैं कि अगर आपके पास गंभीर इच्छा है वो सेवा करने की, दान देने की, तो हो सकता है कि उस समय हमारे पास सारे साधन नहीं हो, संसाधन नहीं हो, लेकिन भगवान कृष्ण सब योजना बनाएंगे.
One devotee here in London was just telling me he made some commitment to give some $20,000 to one project, and even at that time he had no job.
यहाँ पर प्रभु जी इस समय लंदन में वहां पर जब है प्रभु जी वहां पर एक भक्त उन्होंने उनको बोला कि मैंने एक प्रोजेक्ट में वहां पर $20,000 देने के लिए प्रबंध किया लेकिन अभी मेरे पास धन नहीं है.
But he said, I had a desire to do that seva for Krishna, and I said to Krishna, now I'm committing to you, you have to help me, only you can provide the money, so you have to help me. And as soon as he made the pledge, after a few weeks, he got a new job. He got a, you know, very, very good, you know, salary, and everything started working out.
लेकिन वो कह रहे थे कि जब मैंने संकल्प लिया था, तो मैंने ये फिर भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मेरे पास तो मैंने संकल्प ले लिया है ये देने के लिए, लेकिन मेरे पास अभी कुछ संसाधन नहीं है. लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि भगवान ने ऐसी योजना बनाई कि उनके पास उनको काम भी मिल गया, उनकी जॉब मिल गई, और अच्छे से धन मिलना शुरू हो गया, और उसका वो संकल्प पूर्ण हो गया.
So Vaishnav means very generous. We must be very, very generous. This is the mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu.
तो वैष्णव का अर्थ है कि वो बहुत उदार हृदय के होने चाहिए, और यही चैतन्य महाप्रभु का ये अभियान है.
Of course, we must also be practical, but always in your heart. Even if you're not practically able to give, in your heart, you should feel, I really want to give, but I can't give. And then even when you don't give, you still get the benefit because you want to give.
तो निश्चित रूप से हमें व्यवहारिक भी होना चाहिए गृहस्थ होने के नाते, लेकिन प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर हम कभी नहीं भी हमारा क्षमता हो पा रही, लेकिन कम से कम हृदय में ऐसी इच्छा हो कि मैं देना चाहता हूँ.
So the seva bhav, the attitude of wanting to serve must be there.
तो वो भाव, सेवा करने का जो भाव है वो निश्चित रूप से होना चाहिए, और तब उसका हमें फल मिल जाता है क्योंकि हमने कम से कम भाव उत्पन्न किया.
I hope that helps.
Thank you so much, Prabhu.
Thank you so much. I think there are more, but we run out of time, I think, no?
Yes, Prabhu. Prabhu, we are very, very grateful to you, Prabhu. And you have given such a wonderful enlightenment on this wonderful topic today. And I was just seeing that how practical aspect we have given through this pastime of Nalkub and Manigriu, which all, we all can think and can start practicing, Prabhuji. And it was so nectarian. It's always our wonderful good fortune to hear from you, Prabhu. The way you present in a very unique way, and your conclusion always, it goes in the heart. And we always, whenever we hear to you, definitely we come with some of the practical tips that, yes, we have to do this. So thank you so much, Prabhuji, for encouraging all of us.
Thank you, everyone. I wish you a very wonderful evening.